पहला राजा अध्याय 8। सुलेमान ने इसराइली पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया और वे वाचा के संदूक को मंदिर में ले आए, और जब वे ऐसा कर रहे थे परमेश्वर के तेज से मंदिर भर गया, जैसे कि जंगल के मंडप के समर्पण के दिन हुआ था। परमेश्वर की उपस्थिति से मंडप भर गया था। अब फिर परमेश्वर की उपस्थिति जैसे मंडप में थी वैसी मंदिर में भर गई, और सुलेमान ने वहां समर्पण की प्रार्थना की जो एक आदर्श प्रार्थना है। सबसे पहले उसने मंदिर के निर्माण के लिए प्रार्थना की, और तब पद 17 में वो कहता है, अध्याय 8 पद 17 और 18, मेरे पिता दाऊद की ये मनसा तो थी कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, ये जो तेरी मनसा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी मनसा करके तूने भला तो किया। परमेश्वर ने इस बात को दाऊद के खाते में ऐसा रखा जैसा कि उसने निर्माण कार्य पूरा किया, क्योंकि ऐसी मनसा उसके हृदय में थी जबकि उसे भवन बनाने की आज्ञा नहीं मिली। परमेश्वर कभी कभी आपकी मनसा को आपके कार्यों से ऊपर रखता है। ये संभव है कि आपके कार्य ठीक हो परंतु उद्देश्य गलत, जिससे परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। परंतु कभी ऐसा होता है कि आपका उद्देश्य ठीक हो पर आप वो काम न कर पाए। वास्तव में मनसा और इच्छा ही परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है। मनुष्य बाहर का रूप देखते हैं परंतु परमेश्वर हृदय देखता है। परमेश्वर आपके प्रेरणा के कारणों को देखता है कि आपके मन में कार्य करने की मनसा क्या है। मैं सदा अपने हृदय के अनुसार कार्य नहीं कर पाता। हो सकता है मनुष्य काफी दानी हो परंतु उसके पास देने के लिए कुछ न हो। परमेश्वर मन को देखता है, वो देने की मनसा को देखता है, चाहे उसके पास देने को कुछ भी ना हो। परमेश्वर दिल की मनसा को उस धनी पुरुष से अधिक मान्यता देता है जो अपनी अपार संपत्ति में से परमेश्वर को नाम के लिए देता है। याद है यीशु उस विधवा के बारे में बात करता है कि उसने सबसे अधिक दिया, चाहे वो एक दमड़ी ही थी, उसने अपने घटी में से दिया। बाकियों ने अपनी बढ़ती में से थोड़ा दिया था जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं। परमेश्वर दिल देखता है, वो दिल की मनसा जानता है। दाऊद की हार्दिक इच्छा थी कि वो परमेश्वर के लिए एक भवन बनाए, और परमेश्वर ने कहा, ऐसी मनसा करके तूने भला तो किया, तो भी उस भवन को ना बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथ लहू से सने हैं, तू संग्राम का पुरुष है। अध्याय 8 पद 19 और 20। तो भी तू उस भवन को ना बनाएगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। ये जो वचन यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया है। अपने वचन को पूरा करने की परमेश्वर की विश्वास योग्यता पद 20 में ध्यान देने योग्य है। आप निश्चय जान ले कि जो परमेश्वर ने घोषणा की है उसको वो अवश्य पूरा करेगा। वहां सुलेमान परमेश्वर के कहे को पूरा होने की घोषणा करता है। अध्याय 8 पद 20 और 21। और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इसराइल की गद्दी पर विराजमान हूं, और इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से इस भवन को बनाया है, और इसमें मैंने एक स्थान उस संदूक के लिए ठहराया है जिसमें यहोवा की वो वाचा है जो उसने हमारे पुरखाओं को मिस्र देश से निकालने के समय उनसे बांधी थी। ये सुलेमान की प्रार्थना है। अध्याय 8 पद 22। तब सुलेमान इसराइल की पूरी सभा को देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा। सुलेमान खड़ा होकर प्रार्थना करता है और इसराइल की पूरी सभा वहां जमा है। सुलेमान ने हाथ उठाकर परमेश्वर के सम्मुख ये समर्पण की प्रार्थना की। अध्याय 8 पद 23। हे इसराइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। परमेश्वर, तेरे समान कहीं भी कोई परमेश्वर नहीं है। 8 अध्याय पद 24। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था, वैसा ही अपने हाथ से उसको पूरा किया है, जैसा आज है। परमेश्वर के कार्यों को और उसकी प्रतिज्ञा को पूरा होते देखना महिमामय होता है। प्रभु, तूने कहा था और अब ऐसा ही हो रहा है। परमेश्वर के कार्यों को पूरा होते देखना सदा रोमांचक होता है। अध्याय 8 पद 25 से लेकर 27 तक। इसलिए अब हे इसराइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, कि तेरे कुल में मेरे सामने इसराइल की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। इतना हो कि जैसे तू स्वयं मुझे सन्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपने चाल चलन में ऐसी ही चौकसी करें। इसलिए अब हे इसराइल के परमेश्वर, अपना जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसे सच्चा सिद्ध कर। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? अध्याय 8 पद 28 से लेकर 30 तक। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगा, मेरी चिल्लाहट और ये प्रार्थना सुन जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूं, कि तेरी आंख इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है कि मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इसराइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ाकर करे उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। सुंदर, जब वे इस स्थान की ओर देखकर प्रार्थना करे तो स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना। हम जानते हैं तू यहां नहीं, स्वर्ग में रहता है, परंतु सुनना और सुनकर क्षमा करना। वो आने वाली समस्याओं को पहले से देख रहा है। अध्याय 8 पद 31 से लेकर 35 तक। जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वो आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में सुनकर अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसी के सिर लौटा दे, और निर्दोष को निर्दोष ठहरा कर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर जब तेरी प्रजा इसराइल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम ले और इस भवन में तुझ से गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इसराइल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश बंद हो जाए कि वर्षा न होए, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने, जब तू उन्हें दुख देता है और अपने पाप से फिरे, तो तू स्वर्ग में से सुनकर क्षमा करना। ध्यान दीजिए कि वो राष्ट्र पर आने वाली विपत्तियों को लोगों के पाप से जोड़ता है। नीति वचन 14:34 पद। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है और राष्ट्रीय विपत्तियां लोगों के पाप का फल होती है। अध्याय 8 पद 34 से लेकर 39 तक। और अपने दासों, अपनी प्रजा इसराइल के पाप को क्षमा करना, तू जो उनको वो भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए। इसलिए अपने इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है पानी बरसा देना। जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस हो या गेरुआई या टिड्डियों या कीड़े लगे या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखे अथवा कोई विपत्ति या रोग क्यों न हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इसराइल अपने अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए जो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब आदमियों के मन के भेदों को जानने वाला है। जैसे हमने पहले कहा, परमेश्वर मन को देखता है। अध्याय 8 पद 44 और 45। जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तू उन्हें भेजे वहां उनके शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाए और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम पर बनाया है यहोवा से प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर उनका न्याय कर। ये तो आपको ध्यान देना होगा, परंतु देखिए आगे वो क्या कहता है। अध्याय 8 पद 46 से लेकर 49 तक। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उनको बंधुआ करके अपने देश को चाहे वो दूर हो चाहे निकट ले जाए, तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंधुआ करने वालों के देश में तुझ से गिड़गिड़ा कर कहे कि हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, और यदि वे अपने उन शत्रुओं के देश में जो उन्हें बंधुआ करके ले गए हो अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरे और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है तुझसे प्रार्थना करे, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। आपको याद होगा दानियल बाबुल में बंधुआ था। मादी फारस के राजा ने बाबुल को जीत लिया और राजा दारा ने ये आदेश निकाला कि यदि कोई मनुष्य भी 30 दिन के अंदर राजा दारा को छोड़ किसी और के सन्मुख अपनी याचना या प्रार्थना करेगा तो वो शेरों की मांद में डाला जाएगा। आपको याद होगा, दानियल ने घर जाकर अपनी रीति के अनुसार खिड़की खोलकर, जो यरूशलेम की ओर खुलती थी, प्रभु से प्रार्थना की। वो सुलेमान की प्रार्थना दोहरा रहा था, प्रभु यदि वे बंधुए हो जाएं और वे मुड़कर इस स्थान की ओर प्रार्थना करें, उसकी सुन लेना। इससे पहले 9 अध्याय में दानियल की प्रार्थना बहुत सुंदर है, क्योंकि यहां वो फिर से उन पदों को याद करता है। दानियल ने जब प्रार्थना की तो वो वास्तव में पापों को स्वीकार करना था। प्रभु, हमने पाप किया है, हमने दुष्टता किया है। उसने अपने पाप स्वीकार किए। ऐसा ही सुलेमान ने कहा, प्रभु यदि वे बंधुआई में हो और अपने पापों को मान ले। और दानियल ने सुलेमान की समर्पण की प्रार्थना का अनुसरण किया। यरूशलेम की ओर घूमना, पाप स्वीकार करना, परमेश्वर से क्षमा और सहायता मांगना। दानियल बहुत मनमोहक मनुष्य था। वो परमेश्वर का वचन जानता था, वो यरमिया की भविष्यवाणी जानता था, वो जानता था कि बंधुआई के समय का अंत होगा। इसलिए उसने सुलेमान की प्रार्थना के नमूने का अनुसरण किया। दानियल ने बाबुल की बंधुआई में रहते हुए प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुना और वे लोग उस बंधुआई से स्वतंत्र हो गए। ये प्रार्थना सुलेमान ने मंदिर बन जाने के बाद की थी और परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर बंधुआई के समय दिया। इसके प्रत्येक शब्द को दोहराया जाता था, ना कि उसका सारांश। दूसरा इतिहास की पुस्तक में सुलेमान के लिए परमेश्वर का उत्तर था। दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये परमेश्वर का उत्तर था। इसके बारे में हम और अधिक दूसरे इतिहास में पढ़ेंगे। सुलेमान ने अपनी प्रार्थना और विनती समाप्त की और पद 54 के अंत में लिखा है, सो यहोवा की वेदी के सामने से उठा। अध्याय 8 पद 22 में लिखा है कि सुलेमान यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और हाथ उठाकर प्रार्थना की, परंतु यहां हम देखते हैं कि वो अंत में यहोवा के सामने घुटनों पर आ गया था। अध्याय 8 पद 54 के मध्य में लिखा है, तब वो जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, अर्थात ये कि उसने खड़े होकर प्रार्थना आरंभ की, घुटनों पर गया और उसके हाथ स्वर की ओर उठे थे। अध्याय 8 पद 55-56, और खड़ा हो समस्त इसराइली सभा को ऊंचे स्वर से ये कहकर आशीर्वाद दिया कि धन्य है यहोवा, जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इसराइल को विश्राम दिया है, जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरा हुआ नहीं रही। क्या ये परमेश्वर की एक बड़ी गवाही नहीं है? उसकी प्रतिज्ञा में से एक भी शब्द पूरा हुआ बिना नहीं रहा। अध्याय 8 पद 57-61। हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे। वो हमको त्याग न दे और न हमको छोड़ दे। वो हमारे मन अपनी ओर ऐसा फिराए रखे कि हम उसके सब मार्गों पर चला करें और उसकी आज्ञाएं और विधियां और नियम, जिन्हें उसने हमारे पुरखाओं को दिया था, नित माना करें। और मेरी ये बातें जिनकी मैंने यहोवा के सामने विनती की है वो दिन और रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहे और जैसा दिन दिन प्रयोजन हो वैसा ही वो अपने दास का और अपनी प्रजा इसराइल का भी न्याय किया करे और इससे पृथ्वी की सब जातियां ये जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। जो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज की नाई उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। उसने लोगों को सचेत किया, तुम्हारा मन परमेश्वर की ओर पूरी रीति से लगा रहे और उन्होंने मेल बलि प्रभु के लिए अर्पण की। अध्याय 8 पद 63। और जो पशु सुलेमान ने मेल बलि में यहोवा को चढ़ाए सो 22,000 बैल और 120,000 बेड़े थी। शायद ये सबसे बड़ा भोज था। ये परमेश्वर के सम्मुख पर्व और उत्सव बनाने का बड़ा समय था जो भवन के निर्माण पूरा करने और समर्पित करने पर सुलेमान ने आयोजित किया था। अध्याय 8 पद 64। उस दिन राजा ने यहोवा के भवन के सामने वाले आंगन के मध्य भी एक स्थान पवित्र किया। उसने इस स्थान को पवित्र ठहराया क्योंकि बलि का स्थान बलि और उत्सव मनाने को काफी नहीं, इसलिए आंगन के पूरे स्थान को पवित्र किया गया और पूरे स्थान को बलि के लिए प्रयोग किया गया। अध्याय 8 पद 65। और सुलेमान ने और उसके संग समस्त इसराइल की एक बड़ी सभा ने जो हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाते तक के सब देशों से इकट्ठी हुई थी 2 सप्ताह तक अर्थात 14 दिन तक हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने पर्व को माना। 14 दिन तक ये पर्व चलता रहा। अध्याय 8 पद 66। और वे राजा को धन्य धन्य कहकर उस सब भलाई के कारण जो यहोवा ने अपने दास दाऊद और अपनी प्रजा इसराइल से की थी आनंदित और मग्न होकर अपने अपने डेरे को चले गए। इसी तरह से लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति से लौटना चाहिए आनंदित और मग्न। यही ठीक व्यवहार है। परमेश्वर के साथ रहकर उसकी संगति से सदा आनंद और मग्न होना चाहिए। पिता, हम तेरे वचन का अध्ययन करने के सौभाग्य के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे वचन के अध्ययन की सुविधा के लिए। तेरा आत्मा वचन को आशीषित करे और हम तेरे वचन को अपने हृदय में बसा पाए और इतिहास के अनुभवों से सीखे। प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम तेरे मार्गों पर चले, तेरे वचन पर बने रहे। परमेश्वर, हम तेरे विश्वास योग्यता और प्रतिज्ञाओं का अनुभव प्राप्त करें। पिता, हम तेरी असीम आशीषों और प्रतिज्ञाओं के लिए तेरे आभारी हैं और हम तुझ में विश्राम पाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।